नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित 5 राज्यों को 1,554 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त धनराशि को मंजूरी दी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार ने ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए कई क्रांतिकारी योजनाएं शुरू की। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम को अंतिम रूप देने के लिए आज शाम भाजपा विधायक दल की बैठक। विधायक दल का नेता चुनने के लिए रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनकर पर्यवेक्षक नियुक्त। श्री ज्ञानेश्वर कुमार ने नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाला। और महिला प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स आज शाम वडोदरा में दिल्ली कैपिटल्स के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने पिछले वर्ष की आई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित 5 राज्यों को 1,554 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त धनराशि सहायता को मंजूरी दी है। ये राशि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल कोष से जारी की जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार ने ग्रामीण नागरिकों के जीवन को अधिक आरामदायक बनाने के लिए कई क्रांतिकारी योजनाएं शुरू की है। उन्होंने कहा है कि इन योजनाओं ने देश की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान की है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन AARDO के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत AARDO को अपने समर्थन के साथ ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाएगा। इस दौरान श्री सिंह ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और एक पेड़ मां के नाम अभियान एवं लखपति दीदी जैसी योजनाओं पर बल दिया। दिल्ली भाजपा विधायक दल की बैठक आज शाम नई दिल्ली में होगी। इस बैठक में भाजपा के सभी निर्वाचित विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। बैठक में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। इस बीच पार्टी ने आज दिल्ली में विधायक दल की बैठक के लिए 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक सांसद रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनकर को नियुक्त किया है। अगले मुख्यमंत्री के लिए शपथ ग्रहण समारोह कल सुबह दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीती है। श्री ज्ञानेश्वर कुमार ने आज नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने श्री राजीव कुमार का स्थान लिया। कार्यभार संभालने के बाद अपने संदेश में श्री कुमार ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए पहला कदम मतदान होगा। केरल कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ज्ञानेश्वर कुमार के पास केंद्र और राज्य दोनों सरकारों में काम करने का अनुभव है। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में सचिव के रूप में भी कार्य किया। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि सरकार राज्य को 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और उसने पिछली बजट घोषणाओं में 73% को पूरा कर लिया है। उन्होंने आज राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पहला हरित बजट पेश करते हुए आगामी वर्ष में 1,25,00,000 सरकारी पदों और 1,50,000 निजी क्षेत्र की नौकरियों के लिए भर्ती की घोषणा की। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने युवाओं से आदिवासी समुदाय की परंपरा, संस्कृति और भाषा की रक्षा करने का आह्वान किया है। आयोग के 22वें स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि युवाओं को जन जागरण जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से इस प्रयास में शामिल किया जा रहा है। श्री आर्य ने कहा है कि आयोग एक पेड़ मां के नाम अभियान को पूरी लगन और सक्रियता से क्रियान्वित कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई डेटा नाम के एक सोशल आरबीआई डेटा नाम से एक मोबाइल ऐप शुरू किया है जो लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित व्यापक आर्थिक और वित्तीय आंकड़े उपलब्ध कराएगा। बैंक के एक बयान में कहा गया है कि यह ऐप भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक डेटा की 11,000 से अधिक विभिन्न श्रृंखलाएं उपलब्ध कराएगा। उपयोगकर्ता डेटा डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऐप में डेटा के स्रोत का विवरण भी शामिल किया गया है। महान मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की आज 395वीं जयंती मनाई जा रही है। आज ही के दिन सन 1630 में महाराष्ट्र के पुणे जिले में शिवनेरी किले में जन छत्रपति पति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी और मुगल शासन को चुनौती दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज नागरिकों को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर पुणे में पदयात्रा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती पर आज महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 10 दिन में अमेरिका से निर्वासित किए गए अवैध भारतीय अप्रवासी बहुत निराश है। उनमें से कुछ बेईमान ट्रैवलर एजेंटों के शिकार हुए, जिन्होंने पहले उन्हें विदेश में रोजगार का लालच दिखाकर ठगा और फिर उन्हें अवैध तरीके से विदेश भेजा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनमें से अधिकांश छोटे शहरों और गांवों में से बसे मध्यम वर्गीय परिवारों से हैं, जहां रोजगार के अवसर कम है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के युवाओं से अपील की है कि वे गलत तरीकों से विदेश जाने का विचार त्याग कर अपने राज्य को देश में अग्रणी बनाने के लिए कड़ी मेहनत करें। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में लाखों श्रद्धालुओं का आना जारी है। महाकुंभ में अब तक 56,12,00,000 श्रद्धालु पवित्र जल में डुबकी लगा चुके हैं। इस आयोजन के मुख्य आकर्षणों में संगम के पास प्रतिष्ठित बड़े हनुमान मंदिर भी शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मंदिर का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। पवित्र स्नान के बाद यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 देशों के समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए कल से दक्षिण अफ्रीका की 2 दिवसीय यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि श्री जयशंकर की भागीदारी से G20 देशों के समूह के साथ भारत का जुड़ाव मजबूत होगा और इस महत्वपूर्ण मंच पर ग्लोबल साउथ की आवाज को बल मिलेगी। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिमी राजस्थान, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज हवाएं और बिजली चमकने के साथ ही गरज और बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति ने 13वीं बैठक आज क्वालालंपुर में हुई। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने मलेशिया के रक्षा मंत्रालय में महासचिव लोकमान कीम बिन अली से इसकी 6 अध्यक्षता की। दोनों देशों ने हाल ही के वर्षों में सशस्त्र बलों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग पर प्रसन्नता व्यक्त की। हमास ने गाजा युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण के दौरान एक बार में ही सभी इजरायली बंदियों और फिलिस्तीनी कैदियों को अदला बदली का प्रस्ताव रखा है। हमास ने यह भी पुष्टि की है कि वह शनिवार को उन 6 बंधकों को भी रिहा कर देगा जिन्हें पहले चरण में मुक्त किया जाना था और अन्य 4 के शव कल लौटा दिए जाएंगे। उधर इसराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा है कि युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण की बातचीत इस सप्ताह होगी। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने वाले बच्चों के लिए आव्रजन अदालत में कानूनी सहायता प्रदान करना बंद कर दिया है। यह निर्णय निर्वासन का सामना कर रहे उन लोगों को प्रभावित करेगा जो वकील का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। अमेरिका के आंतरिक विभाग ने इस आदेश के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की आलोचना करते हुए उन्हें एक खराब वार्ताकार और बेहद अक्षम्य बताया है। रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 3 साल से जारी युद्ध को समाप्त करने को लेकर अमेरिकी प्रशासन की रुख के साथ बातचीत पर बढ़ते तनाव के बीच श्री ट्रंप ने कहा कि ये सही नहीं है। श्री जेलेंस्की ने यूक्रेन और यूरोपीय सहयोगियों को सऊदी अरब में अमेरिकी और रूसी अधिकारियों के बीच बातचीत से बाहर को लेकर अमेरिका की आलोचना की थी। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। ट्रंप ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन को पहले ही युद्ध समाप्त कर देना चाहिए था। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शाम वडोदरा में यूपी वॉरियर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट आज से शुरू हुआ। पहले मैच में आज कराची में पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से हो रहा है। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर के 2:30 बजे से खेला जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।